हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कर्म योग श्लोक क्रमांक 36। बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक हैं, इस पे हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इस जगत में हम बहुत पाप होते हुए देखते हैं, अपने जीवन में भी हमसे बहुत पाप हुए हैं, और पाप का क्या कारण है इसके बारे में चर्चा आज होगी। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलदिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। जीवात्मा, प्रश्न आपने महसूस किया होगा अपने जीवन में भी बहुत ही प्रैक्टिकल है, और कभी कभी इसका एक गलत भावना भी हमारे मन में आ जाती है कि भगवान हमसे पाप करवा रहे हैं। ये बात सही नहीं है। भगवान हमसे पाप नहीं कराते, कोई और ही है कारण इसका, जिसकी वजह से हम लोग पाप करते हैं। तो भगवान से अर्जुन प्रश्न कर रहे कि हम लोग देखते हैं कि लोग जानते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, फिर भी जानते बूझते हुए भी पाप में प्रवृत्त व्यक्ति क्यों होता है। तात्पर्य, जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त रहता है। यानी कि जिस प्रकार से एक पानी की बूंद जब वर्षा में ऋतु में आती है, पानी की बूंद गिरती है, तो मूलतः वो जो बूंद है वो शुद्ध होती है, लेकिन मट्टी का में गिरने पे, मट्टी का संसर्ग प्राप्त करके वो अशुद्ध हो जाती है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। बिना झिझक के मतलब, जब हम अज्ञान में होते हैं तब तो पाप करने में कोई हमको झिझक होती ही नहीं है, लेकिन जब ज्ञान भी हो जाता है, शास्त्र का ज्ञान और इवन भगवद गीता का भी ज्ञान, फिर भी बहुत बार जीवन में व्यक्ति के पाप हो जाता है, यानी वो नहीं चाहता है फिर भी पाप कर्म हो जाते हैं। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है, मतलब जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी जीव हैं उस प्रकार से विकृत बुरे कार्य क्यों करते हैं। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता दिख नहीं है। अब एक व्यक्ति के मन में डाउट आ सकता है कि पूर्वगत किए गए भोग के जो संस्कार हैं, क्या उसकी वजह से जो छाप है चित्त में वो पाप कराते हैं या फिर भगवान पाप कराते हैं। भगवान किसी व्यक्ति को पाप करने के लिए प्रेरणा नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान कृपालु हैं और केवल एक उपदृष्टा के रूप में हृदय में रहते हैं, और जो संस्कार हैं भोग के वो भी हमको प्रेरणा नहीं दे सकते, क्योंकि वो अचेतन वस्तु हैं। जो संस्कार हमारे चित्त पे हैं वो अचेतन वस्तु हैं, तो वो प्रेरणा देने का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो अब ऐसा क्या है जो हमको प्रेरणा देता है? प्रेरणा क्या देता है? बिल्कुल बलपूर्वक नियोजित कर देता है पाप करने के लिए। तो आइए हम उसको देखेंगे, श्लोक क्रमांक 37 से आगे। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येयन् इम इह वैरिणम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं की इच्छा, काम, ये काम जीवात्मा की स्वरूपगत प्रॉपर्टी है। कभी भी जीवात्मा को इच्छा से, उसे ऐसा नहीं हो सकता कि जीवात्मा इच्छा ना करे। तो जो हमारे हृदय में, हमारे चित्त में वासनाएं होती हैं, संस्कार, वो जब हमारी इच्छा से मिल जाती हैं तब वो काम के रूप में परिणत हो जाते हैं और वो काम हमारे, हमको नियोजित कर देता है पाप करने के लिए। पिछले श्लोक में वासना को और भगवान को पाप का प्रेरणादायक व्यक्ति या प्रेरणा का स्रोत के रूप में इसका खंडन हो चुका है कि प्रेरणा नहीं देते हैं पाप करने के लिए। तो जब वासनाएं, जो इच्छाएं हैं, क्षमा कीजिएगा, जो संस्कार हैं वो इच्छा में परिणत हो जाते हैं जीवात्मा की फ्री विल, स्वेच्छा के द्वारा, तब वो काम हमको नियोजित करता है। यानी कि हमारे चित्त पे चाहे कितने बुरे भी संस्कार हों, हर क्षण हमारे पास स्वेच्छा है कि उन संस्कारों पे हम कार्य करें या ना करें। उन संस्कारों को तुरंत हम मिटा नहीं सकते, लेकिन उन संस्कारों पे कार्य करना या ना करना, ये हमारी स्वेच्छा है। और जब हम स्वेच्छा का उपयोग रजोगुण के संपर्क में आने के कारण करते हैं तो काम उत्पन्न होता है और उससे फिर हम पाप में कार्य करते हैं। तात्पर्य, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। इसी बात की हम चर्चा कर रहे थे। रजोगुण के संपर्क में आने से जो हमारी इच्छा शक्ति है वो संस्कारों के संग मिलकर के काम में परिणत हो जाती है। अथवा दूसरे शब्दों में, ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग में दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है, क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ईश्वर प्रेम में व्यक्ति भगवान कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है और इसे प्रेम कहेंगे। और काम का अर्थ है अपनी इंद्रिय तृप्ति की वासना, अपने इंद्रिय तृप्ति को पूर्ण करने का प्रयास करना। कृष्णेर इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम। अपनी इंद्रियों की प्रीति की जो इच्छा है उसे काम कहेंगे और कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति की इच्छा को हम प्रेम कहेंगे। तो प्रभुपाद सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, दूध और दही एक ही जैसा होता है, लेकिन बस थोड़ा सा संसर्ग इमली का हुआ, खट्टापन आ गया तो दूध जो है वो दही में परिणत हो जाता है। इसी तरह भगवत प्रेम जब रजगुण के संपर्क में आ जाता है तो फिर वो काम के रूप में परिणत हो जाता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है और ये काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है, ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर के सत्वगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। बहुत सुंदर बातें हैं, थोड़ा विचार कीजिएगा। जब हृदय में कोई काम आता है, भोग की इच्छा आती है, हम भोग का प्रयास करना चाहते हैं और वो अगर हमको भोग नहीं मिलता तो हम क्रोधित हो जाते हैं। आहार निद्रा भय में तो उनकी जो भी इच्छा है जब वो पूर्ण नहीं होती है तो आप देखेंगे कि हमें क्रोध आ जाता है। प्रायः लोग प्रश्न करते हैं कि क्रोध क्यों आता है, तो क्रोध का कारण ही है यही काम। और काम का कारण क्या है? रजोगुण। इस जीवन में, आजकल के जीवन शैली में रजोगुण तमोगुण का बहुत बढ़ावा है, इसी कारण से हम लोग क्रोध और काम का अनुभव बहुत करते हैं जीवन। और जब क्रोध आ जाता है तो व्यक्ति मोहित हो जाता है। मोह का अर्थ क्या है? मोह का अर्थ है व्यक्ति भूल जाता है कि उसके उस पहली बात तो अपनी उसकी स्मृति भूल जाती है, वो है क्या वो भूल जाता है। हमने पहले भी चर्चा किया था इस बात को कि ध्यायतो विषयान् पुंसः वाले श्लोक में, और अपनी वास्तविकता को भूल करने करके व्यक्ति की स्मृति भी पूरी भूल जाती है और फिर व्यक्ति इस जगत में भोग की कार्य में लगा रहता है, संसार चक्र चलता रहता है। तो सोल्यूशन क्या है? व्यक्ति ट्रेनिंग के माध्यम से भक्तों के संग में आकर के सीखे कि कैसे वो अधिक से अधिक सतगुण का अनुशीलन करे। जैसे सुबह उठना, सुबह का मतलब 4 बजे कम से कम 3:30-4 बजे उठना, स्नान करना, जप करना, भगवत गीता पढ़ना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, फिर शाम को आकर के श्रवण कीर्तन में लगना, ये बहुत ही शक्तिशाली तरीके हैं जिसके द्वारा हमारा चित्त सत्वगुण को, एक्चुअली दिव्य स्थिति है लेकिन दिव्य स्थिति में आने से पहले हम सत्वगुण को क्रॉस करते हैं तो ये हमें सत्वगुण की तरफ लेके आता है। भागवत सुनना, ये सब चीज़ें सत्वगुण के कार्य हैं और उससे हमको जब सत्वगुण की तरफ बढ़ने लग जाएंगे तो क्रोध और काम ये हमारे चित्त को कम प्रभावित करेगा। तो हमें याद रखना चाहिए इस पूरे तत्पर में कि काम का जो कारण है वो है रजगुण, तो इसलिए हमें रजगुण को तमगुण की तरफ जाने के बजाय सतगुण की तरफ लेके जाने का प्रयास करना चाहिए और ये हमारे इसी साधना हमारे इसलिए हेल्प करती है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्माएं उनकी इस चिदानंद के ही अंश हैं, उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है किंतु अपने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा के उस इंद्रिय से बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण ऋषियों के प्रति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की और जब जीवात्माएं दीर्घकाल तक काम कर्म में फंसे रहने के कारण पूर्णतः उब जाती हैं तब वे अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। बहुत सुंदर है पैराग्राफ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, थोड़ा समय लगेगा समझाने में इसको। जब यहाँ भगवान बातें हो रही हैं कि भगवान ने हमारी रचना करी तो रचना का अर्थ यही सोचना चाहिए कि हम कभी नहीं थे। ऐसा कोई समय नहीं है कि मैं कभी नहीं था, लेकिन सिद्धांत समझाने के लिए इस प्रकार से बताया जाता है कि भगवान के हम सब लोग विस्तारित अंश हैं, हम भी भगवान के समान ही शाश्वत हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हम छोटी छोटी प्रॉब्लम से परेशान हो जाते हैं लेकिन एक्चुअली हम लोग शाश्वत हैं और जगत की समस्याओं से हमारा कोई खास सरोकार है ही नहीं, खास क्या बिल्कुल भी सरोकार नहीं। तो भगवान ने अपने को आपको विस्तार किया है जीवात्माओं के रूप में ताकि हमारी हम उनकी सेवा करके खुद भी आनंद की प्राप्ति करें और भगवान को भी इस प्रकार से सुख दें। तो इस सेवा को, इस प्रेम को भगवान को देने की स्वेच्छा हमारे पास हमेशा होती है, हमेशा रहती है। अगर हमारे पास कोई स्वेच्छा नहीं हो तो प्रेम का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। किसी को हम पिस्तौल दिखा कर सर पे हम प्रेम नहीं कर सकते कि आप मुझसे प्रेम कीजिए। अब इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की स्वेच्छा भी, ये स्वतंत्रता हमारे पास है और उसका दुरुपयोग करके हम भोग वांछा करते हैं कि मैं कृष्ण की सेवा क्यों करूँ, कृष्ण से अलग रह करके विपरीत रह करके भोग करूँगा। तो भगवान ने ये जगत बनाया है जिसमें सब कुछ भगवान का ही है। आप विचार कीजिए कि इस जगत में आपका है क्या, कुछ भी नहीं है, तो इसके भोगता इसके स्वामी हम कैसे हो गए, सोचना चाहिए। लेकिन अद्भुत बात है कि हम कभी नहीं सोचते इस जगत का कुछ भी मेरा नहीं है तो मैं इसका स्वामी कैसे हो गया। तो खैर, भगवान का सब कुछ है और भगवान के द्वारा ही सब कुछ नियंत्रित है, फिर भी हमें कहीं भगवान दिखते नहीं है। तो ये जो पैराग्राफ है बहुत ज़बरदस्त है, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है जगत, सब कुछ उनके द्वारा नियंत्रित है, सब कुछ उनका है, लेकिन यहाँ हम ये कल्पना कर सकते हैं कि मैं भगवान से अलग भोगता हूँ, मैं भगवान से अलग नियंता हूँ और इस भावना के आधार पे ही हम जगत में भोग कर सकते हैं, अदरवाइज हम भोग नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ ये जगत का एक नियम भी है कि भोग करने के साथ साथ व्यक्ति को एक ऊबन महसूस होती है, असंतुष्टि अनुभव होती है, इसीलिए समाज में लोग असंतुष्ट भी हैं। तो जीवात्मा को भोग करने की सुविधा भी है लेकिन ये भी भगवान ने इस प्रकार से जगत बनाया है कि भोग करते करते व्यक्ति ऊब जाता है और जब वो ऊब जाता है, भले एक जन्म में नहीं हो, तो फिर धीरे धीरे कभी न कभी उसको ये, और फिर भक्तों का संग भी मिल जाए उसको, तो व्यक्ति स्वीकार करता है हाँ मैं इस अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे जीवन में कुछ उच्चतर उद्देश्य चाहिए। और ये कोई बहुत भाग्यवान व्यक्ति है तभी उसको इस प्रकार का संग प्राप्त होगा। और यदि आपको इस प्रकार का संग और ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो समझे कि आप बहुत भाग्यवान हैं। इस भाग्य का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए, भगवान की भक्ति में खूब जोर शोर से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भोग करके हम हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने समझा कि भोग की भगवान ने जगत बनाया ही क्यों है, और ये बहुत कठिन प्रश्न है, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से, परंपरा की कृपा से हमें इस बात का उत्तर मिल पा रहा है। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें ये कहा गया है, अथात हो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, भगवान से मेरा क्या संबंध है, ये सब ब्रह्म जिज्ञासा में आता है। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, जन्माद अस्य तोन्वयात इतरतस् च, सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है और परब्रह्म है श्री कृष्ण, अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावनामृत में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हों तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की, नहीं पहले मैं समझाता हूँ सिद्धांत क्या समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। सिद्धांत ये है कि काम और क्रोध ये सब रजगुण से आ रहे हैं, और ये रजगुण भी भगवान की शक्ति है, तो ये इनसे युद्ध करने के बजाय इनका उपयोग हमें भगवान की सेवा में करना चाहिए। दूसरे अध्याय में एक बहुत सुंदर श्लोक आया है अम्बरीश महाराज के बारे में, जिसमें आता है, कामम तु दास्ये न तु काम कामया। भगवान की दासता के लिए, भगवान की सेवा के लिए अपनी इच्छाओं का उपयोग किया हमने। अब इसका अर्थ क्या है? जैसे मान लीजिए आप पैसा कमाना चाहते हो, या आप कुछ गाना चाहते हैं, या फिर आप मृदंग बजाना चाहते हैं, या खाना चाहते हैं, कोई भी कार्य करना आपको अच्छा लगता है, तो ये सामान्य जगत में ये सारे कार्य हमारे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पर आधारित होगा, काम के ऊपर। हम भोग कैसे कर सकते हैं? बस इसको भगवान की तरफ जोड़ देना चाहिए। आपको खाना खाना अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, भले भगवान को भोग लगाइए, तो आप देख रहे हैं कि वही काम जो है अब भगवान की सेवा में परिणत हो गया, और फिर धीरे धीरे करके ये प्रेम भगवत प्रेम के रूप में बढ़ जाएगा। क्रोध कैसे हम उपयोग में ला सकते हैं? जो लोग भगवान के द्वेषी हैं, जो भक्तों के द्वेषी हैं, उन पे क्रोध का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि वो भी कम से कम हो, उनको भक्ति में लाने का प्रयास करें। क्योंकि हम अभी जो उदाहरण दिया जा रहा है हनुमान जी का, उसका हम लोग हनुमान जी के स्तर पर नहीं है, फिर भी क्रोध का उपयोग भक्तों की तरफ नहीं, बल्कि क्रोध का उपयोग भक्तों से द्वेषी लोगों के प्रति कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो हैं उनका स्पिरिचुअलाइजेशन हो जाता है। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बातें बोल रहे हैं कि जो आप कुछ करना चाहते हो, जो भगवान ने आपको योग्यता दी है, उसको हम भगवान की सेवा में नियोजित करें, तो हृदय में काम का स्थान ही नहीं रह जाएगा, वस्तुतः उस काम को हम कृष्ण की सेवा में नियोजित करते हैं। तो किस प्रकार से काम हमारे हृदय को, हमारे ज्ञान को ढकता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज आप इस श्लोक पे विचार कीजिए, से समझने का प्रयास कीजिए, प्रश्न क्या था और भगवान का उत्तर क्या था, और कैसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, इस पे आप विचार करें। ठीक है, हरे कृष्णा।